यशाया अध्याय 28। अध्याय 28 में भविष्यद्वक्ता स्थानीय वर्तमान परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करता है। वो बहुत दूर अंत समय तक पहुंच गया था, अब वो फिर लौटकर उत्तरी राज्य के प्रमुख गोत्र को, जो इसराइल का प्रतीक है, संबोधित करता है। यशाया अध्याय 28 पद 1 से लेकर 3 तक। घमंड के मुकुट पर हाय, जो एप्राइम के मत वालों का है, और उनकी भड़कीली सुंदरता पर, जो मुरझाने वाला फूल है, जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर दाक मधु से मत वालों की है। देखो, प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थ्य है, जो ओले की वर्षा, वो उजाड़ने वाली आंधी या बाढ़ की प्रचंड धार की नाई है, वो उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। ए प्रेमी, मत वालों के घमंड का मुकुट पांव से लताड़ा जाएगा। यहां यशाया उत्तरी राज्य पर आने वाले अशूरों के आक्रमण की चर्चा कर रहा है। उत्तरी राज्य समृद्ध था और घमंड में पूर्ण था। उसकी घाटियां पलवित हो रही थी, वे लापरवाह हो गए थे, वे आमोद प्रमोद सुख भोग भोग विलास में लीन थे, वे परमेश्वर को खोजना भूल ही गए थे। अतः न्याय उन पर आने वाला था, परंतु फिर भी वे दाक मधु से मतवाले बने हुए थे। वे इतिहास के उस संकटकालीन समय में थे, जब दुश्मन उन्हें निगालने को तैयार था। उनका अंत आ गया था, उनकी समृद्धि का अंत आ गया था, परंतु उनमें परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके उसे खोजने की इच्छा ही नहीं थी। उनमें भोग विलास और मतवालापन व्याप्त था। वे उस कठोर दंड के प्रति निश्चिंत थे, जो उन पर आने वाला था। ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अर्थात आम जनता भुलक्कड़ है, जबकि परमेश्वर का दंड उनके सिरों पर मंडरा रहा था। जब यीशु आएगा तब भी ऐसा ही होगा, यीशु ने कहा, लूका 17 अध्याय 26 पद। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। नूह के दिनों में लोग खाने पीने में मस्त थे और ऐसा विचार रखते थे कि ऐसे व्यवहार में कोई बुराई नहीं है। वे भी नहीं मानते थे कि परमेश्वर का न्याय उनके सिरों पर है और वे नाश होने ही वाले हैं। नूह के नाव में जाने के दिन तक वे राग रंग में मस्त थे। ज्यों ही नूह नाव में चढ़ा, त्यों ही पानी बरसना आरंभ हुआ, तब उन्हें होश आया, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एप्रेम का भी यही हाल है, न्याय उनके सिर पर मंडरा रहा है, परंतु वे रंग रेली में मस्त है, घमंड से भरे हैं। जब सेनहरीब ने आक्रमण किया तब उनका नशा टूटा, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। आज के संसार में भी यही देखने को मिलता है कि मनुष्य परमेश्वर के उस आने वाले दंड के विषय में सोचना ही नहीं चाहता है, जो पृथ्वी पर मंडरा रहा है। हम बुराइयों की शक्तियों को देखते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि वे बुराइयों की खुली चर्चा करते हैं, वे निर्लज्ज हो बुराइयों का प्रदर्शन रहे हैं। जिन बातों को कभी मनुष्य लज्जाता था और उन्हें छिपाता था, आज उन्हीं बातों का सड़कों पर ध्वज लेकर खुला प्रदर्शन हो रहा है। पापों का विज्ञापन दिया जा रहा है, हम दंड के लिए तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर का भारी हाथ हम पर उठा हुआ है और परमेश्वर का दंड आने वाला है, पर लोग इस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। वे राग रंग की खोज में मस्त है, घमंड में बड़े चले जा रहे हैं, वे धनोपार्जन में व्यस्त है। वे जानते ही नहीं कि अकस्मात ही परमेश्वर का दंड बटमार की नाई आ पड़ेगा। ये था एप्रेम का दुखदायी दृश्य जिसके विरुद्ध यशाया चेतावनी दे रहा था कि वे पांव तले रौंदे जाएंगे। इस भविष्यवाणी के 3 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि ऐसा हुआ कि वो महान और गरिमामय देश जिसे परमेश्वर ने आशीषें दी और वो देश खड़ा ना रहा, नाश हो गया। यशाया अध्याय 28 पद 4 और 5। और उनकी भड़कीली सुंदरता का मुरझाने वाला फूल जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर है, वो ग्रीष्म काल से पहले पके अंजीर के समान होगा, जिसे देखने वाला देखते ही हाथ में ले और निगल जाए। उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। यहां वे महिमा का मुकुट पहने हुए हैं, समृद्ध है, पलवित है, परंतु उनका सर्वनाश हो जाएगा। यशाया उन्हें चेतावनी दे रहा था और वे यशाया का ठट्टा कर रहे थे। यशाया अध्याय 28 पद 7। ये भी दाखमधु के कारण डगमगाते और मदिरा से लड़ खड़ाते हैं। याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाख मधु ने उनको भुला दिया है। वे मदिरा के कारण लड़ खड़ाते और दर्शन पाते हुए भटक जाते और न्याय में भूल करते हैं। परमेश्वर यहां मदिरा के विषय में कह रहा है कि मदिरा ने उनके सोच विचार को भ्रष्ट कर दिया है, उनकी भावनाओं को निष्क्रिय कर दिया है, मार डाला है। इसका परिणाम ये हुआ कि वे दर्शन पाते हुए भटक जाते और न्याय में भूल करते हैं। मदिरा पान प्रायः मनुष्य की दृष्टि को मंद कर देता है और उचित निर्णय लेने की क्षमता को नष्ट कर देता है। वो आपकी प्रतिरोधक क्षमता का नाश कर देता है। मतवालेपन में वे मूर्खतापूर्ण काम कर देते हैं, ऐसे काम जो वे अपनी सामान्य मनोदशा में कभी नहीं करेंगे। मदिरा पान आपके निर्णायक क्षमता को नाश कर देता है। जब आप मदिरा पान करते हैं तब आपकी निर्णायक क्षमता अस्थिर हो जाती है। हम सब ये जानते हैं, हमारा कानून ये जानता है। यही कारण है कि मदिरा पान करके वाहन चलाना वर्जित है, क्योंकि आपकी निर्णायक क्षमता में गड़बड़ उत्पन्न हो जाती है, आपकी दृष्टि धूमिल हो जाती है। यहां इसराइली इसके आदि हो रहे थे, अपने जीवन को नाश कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर का हाथ उन पर भारी था। जब आपको ये देखने की आवश्यकता हो कि परिस्थितियां कैसी है, तो आप इसके योग्य नहीं होते, क्योंकि आप मदिरा में डूबे हुए होते हैं। आपको उचित निर्णय लेकर उचित मार्ग लेने की आवश्यकता हो तो आप इस योग्य नहीं रह जाते हैं। मदिरा आपके मस्तिष्क को धुंधला कर देती है। यशाया इसके विषय में स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करता है। यशाया अध्याय 28 पद 8। क्योंकि सब भोजन आसन वमन और मल से भरे हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। इसके उपरांत भी वो उसका ठट्टा करके कहते हैं, यशाया अध्याय 28 पद 9। वो किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? दूसरे शब्दों में वो किसको ज्ञान सिखाएगा? उसे जाकर उन शिशुओं को ज्ञान देना चाहिए जिनका अभी दूध छुड़ाया गया है। वो नर्सरी के बच्चों को सिखाए, वो किसको ज्ञान दे? क्योंकि उसके संदेश में यशाया अध्याय 28 पद 9 और 10, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। परंतु यशाया कहता है कि परमेश्वर घोषणा कर चुका है, यशाया अध्याय 28 पद 11 और 12, वो तो इन लोगों से परदेशी होंठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। इन पदों का यहां बड़ा रोचक समावेश है। आप अचंभा करेंगे कि इन पद को यहां कहने का उद्देश्य क्या है और इनका विषय से क्या संबंध है। वो तो एप्रेम और उस पर आने वाला दंड तथा मदिरा पान के कारण धुंधली दृष्टि और विकृत निर्णयों के विषय चर्चा कर रहा था। वे उसका टट्ठा कर रहे थे कि आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम जैसी बातें तो वो नर्सरी के बच्चों को सिखाए। इसके बीच में वो तो इन लोगों से परदेशी होंठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। प्रेरित पौलुस ने अन्य भाषाओं के वरदान के दुरुपयोग के विषय में जब कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा था, तब उसने इसी पद का संदर्भ दिया था कि परमेश्वर ने यशाया के मुख से इसी पद का संदर्भ दिया था। परमेश्वर तो इन लोगों से परदेशी होंठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो। पौलुस इसे अन्य भाषा बोलने के वरदान की भविष्यवाणी कहता है। परमेश्वर अपनी कलीसिया पर यह वरदान उंडेलेगा और अन्य भाषा बोलने वाले इसके द्वारा विश्राम पाएंगे। मैंने अपने धार्मिक जीवन देखा है, जब मैं समस्या में होता हूं और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ऐसी परिस्थिति में क्या प्रार्थना करूं, या जब मेरे सामने कोई समस्या आ जाती है और मैं नहीं जानता कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों में परमेश्वर की स्तुति कैसे करूं। जब मैं आत्मा में आकर परमेश्वर की स्तुति करता हूं या प्रार्थना करता हूं, तब मुझे विश्राम का अनुभव प्राप्त होता है। मुझे तब परिपूर्ण विश्राम प्राप्त होता है, असीम शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पौलुस इस भविष्यवाणी को उनमें पूरी होती दर्शाता है। जो इस वरदान को अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में अपनाते हैं कि ये एक परिपूर्ण विश्राम का अनुभव है, तब यशाया फिर से अपने विषय पर आ जाता है। यशाया अध्याय 28 पद 13। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, जिससे वे ठोकर खाकर चित गिरे और घायल हो जाएं और फंदे में फंसकर पकड़े जाएं। दूसरे शब्दों में ये वचन इतना सरल है कि वे इसे ठोकर खाएंगे। वे ना तो उस पर कान लगाएंगे और ना ही उसका पालन करेंगे, और इस प्रकार वे फंदे में फंसकर पकड़े जाएंगे। यशाया अध्याय 28 पद 14। इस कारण हे टट्ठा करने वालों, यरूशलेम वासी प्रजा के हाकिमों, यहोवा का वचन सुनो। ये केवल सामरिया में ही नहीं है, परंतु यशाया अध्याय 28 पद 14 से लेकर 18 तक। यरूशलेम वासी प्रजा के हाकिमों, यहोवा का वचन सुनो। तुमने कहा है कि हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है, इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ आए तब हमारे पास ना आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नेव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नेव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा। और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा, और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है वो टूट जाएगी, और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई वो ना ठहरेगी। जब विपत्ति बाढ़ की नाई बढ़ आए तब तुम उसमें डूब ही जाओगे। तुम कहोगे, हमने मृत्यु से वाचा बांधी है और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है, इस कारण विपत्ति जब बाढ़ की नाई बढ़ आए तब हमारे पास न आएगी। क्योंकि तुमने झूठ की शरण ली है, इसलिए परमेश्वर तुम्हारे शरण स्थान को बाढ़ की तरह बहा कर ले जाएगा, और न्याय के आने पर तुम लोग नाश किए जाओगे। परंतु इन सब घटनाओं के मध्य परमेश्वर ने नेव के लिए एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नेव के योग्य पत्थर। ये एक ऐसा पत्थर होगा जो तुम्हें गिरने ना देगा, उसमें तुम विश्राम पाओगे। ये पत्थर दृढ़ नेव है जिसे परमेश्वर ने रखा है। यीशु मसीह वो नेव का अनमोल पत्थर है जिसे राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, परंतु परमेश्वर ने उसे कोने का प्रमुख पत्थर ठहराया। ये लोग यशाया का ठट्ठा करके कहते थे, हे यशाया, हमें नरक का डर मत दिखा, हमने अधोलोक से वाचा बांधी है, उससे प्रतिज्ञा करवाई है, हमने मृत्यु से वाचा बांधी है और हमने अधोलोक से समझौता कर लिया है, इसलिए हमें चिंता नहीं है। यशाया कहता है, तुम्हारी वाचा स्थिर ना रह पाएगी, वो टूट जाएगी। यशाया अध्याय 28 पद 20। क्योंकि बिचौना टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ना ओढ़ने के लिए सकरा है। कुछ लोग परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाते हैं और परमेश्वर की चेतावनी का उपहास करते हैं। कुछ लोग दर्शन शास्त्र में विश्राम की खोज करते हैं। कुछ लोग धर्म कर्म में विश्वास खोजते हैं। कुछ लोग मदिरा और राग रंग में विश्राम खोजते हैं। कुछ लोग समृद्धि में विश्राम खोजते हैं। परंतु इन सब बातों के लिए ये कहना उचित है कि बिछौना बहुत छोटा है और चादर सकरी है। ये वस्तुएं आपको विश्राम प्रदान नहीं करेंगी, आपको समृद्धि संतोष प्रदान नहीं करेगी, राग रंग कभी शांति प्रदान नहीं करेगा। विश्राम और शांति का एक ही स्थान है और वो है सदृढ़ नेव जिसे परमेश्वर ने रखा है। यही वो अनमोल नेव का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। आपको यदि किसी स्थान में विश्राम प्राप्त होगा तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह है, उसके उस परिपूर्ण कार्य में जो उसने आपके उद्धार के लिए किया, उसी में आपको विश्राम प्राप्त होगा। धर्म कर्म में आपको कभी विश्राम प्राप्त नहीं होगा। यहां पर यशाया धर्म गुरुओं के मतवाले होने के बारे में भी कह रहा है कि उनकी दृष्टि धूमिल हो गई है और उनके निर्णय पक्षपाती हो जाते हैं। मेरे विचार में धर्म गुरुओं द्वारा मदिरा पान एक घृणित कार्य है। पौलुस तिमोथियुस को लिखता है कि कलीसिया के बिशप को मदिरा पान नहीं करना है। मेरे विचार में ये निर्णय सब प्रचारकों पर लागू होता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा था, जब हारून और उसके पुत्र वेदी के सामने आए तो निश्चित कर लेना कि उन्होंने मदिरा पान न किया हो, क्योंकि वे जो प्रभु के पात्रों को छूते हैं उन्हें शुद्ध होना आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि हारून के दोनों पुत्र परमेश्वर की वेदी से निकली आग से मारे गए। उसका कारण ये था कि उन्होंने मदिरा पान किया था। जब उन्होंने आग को देखा वे उत्साहित हो गए, क्योंकि वहां पर शोरा हो रहा था। इसी बीच में धूपदान में से अंगारा लेकर वेदी पर चढ़ाने लगे। उस समय वेदी में से परमेश्वर की आग निकली और उन्हें भस्म कर दिया। नशे के कारण उनका बलिदान श्राप में बदल गया। इसके बाद परमेश्वर की ओर से चेतावनी आई। उन दोनों की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा, हारून के पास जाकर कह, अपने बेटों से कह दे कि जब वे यहोवा के सामने आए तो मदिरा पान ना करें। परमेश्वर झूठी प्रेरणा या अपवित्र अग्नि से उपासना स्वीकार नहीं करता है। अतः आज मनुष्य धर्म कर्म के अनुभव में विश्राम पाने का प्रयास कर रहा है, और ये एक त्रासदी है कि कलीसियाएं शिशुओं के बपतिस्मा का पक्ष लेती है और आप उस पर निर्भर करें। आपको उद्धार पाने की चिंता नहीं करना है। क्या आप जब शिशु थे आपका बपतिस्मा हो गया था? यही बहुत है। बपतिस्मा पाते आपके उद्धार प्राप्त हो गया था। बिछौना बहुत छोटा है, आप उस पर निर्भर नहीं कर सकते। जब आप शिशु थे तब आपके चेहरे पर पानी छिड़कना और कुछ शब्दों का उच्चारण से कहीं अधिक होता है उद्धार। उद्धार पाने के लिए मसीह यीशु में सक्रिय विश्वास रखने की आवश्यकता होती है। जो उस पर विश्वास रखेगा वो विश्राम पाएगा। वो उतावली ना करेगा, परंतु वो मन में धीरज रखेगा। जो लोग आपको ये कहते हैं कि उनका 25 वर्ष पहले का भावनात्मक अनुभव है, जहां पर उन्होंने वेदी के सामने घुटने टेके थे, रोए थे, वो भावनात्मक अनुभव काफी है। उनका उद्धार हो चुका है। 25 वर्ष पहले उनको क्या अनुभव था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ आज आपका संबंध कैसा है? अतीत की घटना आपको उद्धार नहीं दे सकती। परमेश्वर के साथ आज का संबंध ही आपको उद्धार दे रहा है। अतीत का अनुभव तब तक अतीत है जब तक वो मेरे आज के संबंध में संचारित नहीं है। प्रेरित पौलुस दमिश्क के मार्ग पर पाए अपने अनुभव के बारे में कहता है, फिलिप्पियों अध्याय 3:7, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। ये पत्र उसने उस अनुभव के 30 वर्ष पश्चात लिखा था। मैंने दमिश्क के मार्ग की बातों को हानि समझ लिया है। अतीत पूरा का पूरा ही कूड़ा है। उसने कहा, निस्संदेह आज 30 वर्ष बाद जब मैं तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूं तो मैं उन पुरानी बातों को जो कभी मेरे लाभ की थी मैं कूड़ा समझता हूं। मैं आज भी उन्हें कूड़ा समझता हूं कि मसीह को जानूं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें 25 वर्ष पूर्व एक भावनात्मक अनुभव हुआ था। वे वेदी की पुकार में आगे आए और रोए। कुछ लोगों का कहना कि ऐसा एक ही अनुभव उद्धार के लिए पर्याप्त है। उन्होंने मसीह को ग्रहण करने पर पुराने जीवन को कूड़ा समझा था, परंतु आज वे वही पुराना जीवन जी रहे हैं। वे प्रभु की सेवा में नहीं हैं, वे प्रभु यीशु मसीह की संगति में नहीं हैं, वे आत्मा के जीवन में नहीं हैं। यदि आप उनसे उनके उद्धार के विषय में पूछे तो वो कहेंगे, ओह मुझे परम महिमापूर्ण अनुभव प्राप्त हुआ था, मुझे कैसी शांति मिली और मैं अद्भुत जोश से भर गया हूं, मेरा शरीर झुनझुना गया और मैं प्रभु के सामने फूट फूट कर रोया। अब आप क्या कर रहे हैं? ओह मैं तो वर्षों से आराधना में गया नहीं, अब मुझे मसीह के नए अनुभव की क्या आवश्यकता, मैंने तो मसीह का अनुभव वर्षों पहले पा लिया है। नहीं नहीं, आप अतीत के अनुभव पर आज स्थिर नहीं रह सकते, आपको यीशु के साथ आज जीवन प्रद और जीवन संबंध की आवश्यकता है। यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15 4 और 5 पर, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे। वो आगे कहता है यशाया अध्याय 28 पद 21, क्योंकि यहोवा ऐसा उठ खड़ा होगा जैसा वो पराजीम नाम पर्वत पर खड़ा हुआ। इस पर्वत पर ही दाऊद ने पलिस्तियों को घात किया था। इस पर्वत का नाम पराजीम भी उसी ने रखा था क्योंकि वहां परमेश्वर ने पलिस्तियों को तोड़ा था। यशाया अध्याय 28 पद 21, और जैसा गिबोन की तराई में उसने क्रोध दिखाया था, यही वो स्थान है जहां यहोशु ने, यहोशु अध्याय 10 पद 12, हे सूर्य तू गिबोन की तराई के ऊपर थमा रह जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। यशाया अध्याय 28 पद 21 से लेकर 24 तक, वो अब फिर क्रोध दिखाएगा जिससे वो अपना काम करे जो अचंभित काम है और वो कार्य करे जो अनोखा है। इसलिए अब तुम ठट्टा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कैसे जाएंगे, क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु यहोवा से ये सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोता रहता है? क्या वो सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने संपूर्ण तैयारी कर ली है, तो क्या अब वो इसे पूरा नहीं करेगा? कहने का भाव ये है कि वो पूरा करके ही रहेगा।